पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष। क्वेश्चन, उग्रवादी आंदोलन के सिद्धांत, कार्यक्रम तथा नीतियों का वर्णन करते हुए उसके प्रति सरकारी रवैये की विवेचना करें। उग्रवाद जुझारू राष्ट्रवाद का एक रूप था। उदारवादियों के विपरीत उग्रवादी ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय विधान का परिणाम या भारत के लिए वरदान के रूप में नहीं देखते थे। उनका मानना था कि यह राज्य छल कपट तथा बल प्रयोग द्वारा स्थापित हुआ। उग्रवादियों को यह भी स्वीकार नहीं था कि अंग्रेजों ने भारत में शांति स्थापित की। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को एक दूसरे का गला काटने से इसलिए रोका ताकि वह सभी का गला काट सके। इस तरह उन्होंने अंग्रेजी शासन के उत्पीड़क एवं भारत विरोधी चरित्र को उसकी समग्रता में समझ लिया था। उग्रवादियों का उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। इस संबंध में लाला लाजपत राय का कथन उद्धृत किया जा सकता है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। तिलक ने उग्रवादियों के उद्देश्य को निर्धारित करते हुए कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। उग्रवादी धड़े के दूसरे नेता बिपिन चंद्र पाल ने इस नए दल की मांगों को इस प्रकार व्यक्त किया है, देश का नया नारा सुधार रिफॉर्म नहीं बल्कि पुनर्गठन रिफॉर्म होना चाहिए। अरविंद घोष ने स्वराज को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। लाला लाजपत राय के अनुसार जैसे दास की आत्मा नहीं होती, उसी प्रकार दास जाति की कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा के बिना मनुष्य केवल एक पशु है। इसलिए एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। उग्रवादी आंदोलन के नीतियों में निम्न बातें स्पष्ट थी। देश को अपनी दुर्गति से उठाने के लिए भार्य प्रतिनिधियों पर बल। दूसरा, लोगों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा, मातृभूमि के लिए किया गया बड़ा सा बड़ा बलिदान भी छोटा है। चौथा, विदेशी राज्यों के लिए अत्यंत घृणा क्योंकि यह हमारे समाज की सभी कुरीतियों के लिए उत्तरदायी है। पांचवा, राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा स्वराज इस दल का ध्येय था। छठा, जनसाधारण की शक्ति में विश्वास। सातवां, जनता को सीधी राजनीतिक कार्यवाही करने के लिए प्रेरणा स्रोत के लिए नए नए नारों का प्रचलन। और आठवां, भारत के भूतकाल का यशोगान तथा भारतीय इतिहास के विरोध से प्रेरणा प्राप्त करना। उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी माल को अंगीकार करने को कहा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा तथा सत्याग्रह पर भी बल दिया गया। विदेशी माल का आर्थिक बहिष्कार तथा स्वदेशी दोनों अपने ही देश में बने माल के प्रयोग कर बल देने से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन तथा भारतीयों को काम तथा सेवा के अवसर मिले। लाला लाजपत राय के अनुसार विदेशी माल का बहिष्कार करने का मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजी व्यापारियों को हानि हो तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने में उसकी सहानुभूति प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय व्यापारियों को अत्यधिक लाभ हुआ तथा वे कांग्रेस की अत्यधिक धन से सहायता करने लगे। सरकार नियंत्रित शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्रवादियों ने विद्यार्थियों से देश सेवा में लगने की अपील की। विद्यार्थियों के देश प्रेम ने अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी। इसके जवाब में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित देशी स्कूल कॉलेजों में देश प्रेम तथा देश सेवा के साथ साथ अपनी संस्कृतियों को सम्मान की नजरों से देखना सीखा। उग्रवादियों ने सहकारी संगठन को भी बढ़ावा दिया ताकि हम लोग आत्मावलंबी बन सके। ग्रामीण स्वच्छता प्रतिबंधक पुलिस कार्य मेलों के आयोजन कार्य के लिए कांग्रेस सेवा दल जैसी संस्थाएं स्थापित की। बहिष्कार तथा स्वदेशी का आलम यह था कि विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। यहां तक कि मेमन सिंह के मोचियों ने अंग्रेजी जूतों की मरम्मत करना छोड़ दिया। बारीलाल में रसोइयों ने विदेशी माल का इस्तेमाल करने वाले मालिकों के यहाँ काम करना बंद कर दिया। कालीकट के धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोना बंद कर दिया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1905-06 में विदेशी नमक के आयात में 140,000 मन की कमी हुई। विदेशी कपड़ा 3 करोड़ गज कम मंगाया गया। जूतों का आयात 75% तथा सिगरेट का आयात 50% घट गया। उग्रवादी आंदोलन ने स्वदेशी विकास को प्रोत्साहन दिया तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार में सहायता की। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया। उसने आजादी के संघर्ष को तर्क व विवाद के स्थान पर जन आंदोलन का चरित्र प्रदान किया। किंतु इन उपलब्धियों के साथ साथ आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी। जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए आंदोलन के नेताओं ने धर्म व पुरातन परंपराओं का जिस रूप में प्रयोग किया उससे हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। वस्तुतः यह एक प्रतिगामी कदम था। उग्रवाद के संबंध में सरकार की नीति। उग्रवादियों के प्रति बारे में सरकार की नीति अत्यंत कठोर तथा दमनात्मक थी। राष्ट्रवादियों के जुझारू तेवर का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साम दाम दंडभेद की बहुआयामी नीति का सहारा लिया। इसके दमन के लिए सरकार ने उदारवादियों को समर्थन दिया तथा उन्हें उग्रवाद की ओर जाने से रोकने के लिए भारतीयों के आकांक्षाओं तथा भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का विश्वास दिलाया। दूसरी तरफ आंदोलनों के बृहत होते सामाजिक अधिकार को तोड़ने के लिए फूट डालो तथा शासन करो की नीति अपनाई। हिंदू तथा मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने तथा तोड़ने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई तथा तिलक द्वारा सलाए गए शिवाजी उत्सव तथा गणपति उत्सव को हिंदुत्व राष्ट्रवाद की प्रतीक बनाकर उन्हें अलग करने का प्रयास किया। दंड की नीति के अंतर्गत उग्रवादियों को कुचलने के लिए दमनात्मक कार्यवाही की गई। 1908 में प्रेस अधिनियम पारित करके भारतीय समाचार पत्रों में लेखन तथा प्रकाशन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया ताकि उग्रवादी अपने विचारों का प्रचार प्रसार न कर सके। आंदोलन के प्रमुख नेताओं लालवाल पाल को लंबी सजाएं देकर उनका जनता से संबंध तोड़ने का प्रयास किया। एक अधिनियम द्वारा बंगाल के उन शिक्षण संस्थाओं को सरकारी अनुदान बंद करने की धमकी दी जिनके विद्यार्थी आंदोलन में भाग ले रहे थे। वंदे मातरम का नारा लगाने पर सरेआम कोड़ों से पीटा जाता था। उत्पीड़न तथा दमन की तीव्रता पर टिप्पणी करते हुए मैनचेस्टर गणराज ने लिखा है, इस तरह का अंधेर रूस में भी नहीं हुआ या नहीं, इस संदेह की बात है। दमन की नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 1907 में नवंबर माह में राजद्रोहात्मक सभा कानून बनाया गया तथा बिना मुकदमा चलाए देश निष्कासन हेतु 1818 के रेगुलेशन एक्ट का सहारा लिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव उपाय किए गए। दमनात्मक कार्यों की भीषणता को देखकर मानव तथा मानवता भी दहल उठी, परंतु यह क्रूर तथा निर्मम दमन भी राष्ट्रप्रेमियों के दिल में राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का असफल सिद्ध हुआ। अब उग्रवादी आंदोलन का समीक्षात्मक विवरण दें। यद्यपि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में उत्पन्न हुए उग्रवादी आंदोलन ने राष्ट्रप्रेम की धारणाओं को अपने सरल सिद्धांत नीतियों तथा कार्यक्रमों की सहायता से जन जन तक पहुंचाया, परंतु इसके विचार तथा राजनीति के विश्लेषण में हमें यह न भूलना चाहिए कि यह एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन नहीं था। इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंदो घोष सभी अपने राजनीतिक आदर्शों तथा कार्यप्रणाली में भिन्न थे। इन नेताओं का विचार भी समय के साथ साथ बदलता रहा। तिलक का स्वराज एक प्रकार का स्वशासन था, परंतु अरविंद का स्वराज अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त करना था। उग्रवादी नेता प्रजातंत्र, संविधान तथा प्रगति की बात करते थे। इसके लिए सामाजिक आधार को विस्तृत बनाने के लिए अनेक समाचार पत्र निकाले तथा अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने प्रत्यक्ष महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रवादियों तथा अंग्रेजी सरकार के पारस्परिक हित एक दूसरे के विरोधी हैं। उनके राजनीतिक तत्वों में पहला भारतीयों के प्रशासन में अधिक स्थान तथा दूसरा उनके आर्थिक शोषण को बंद करना शामिल था। इस प्रकार सहयोग के बदले असहयोग तथा सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनाया। इस प्रकार उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक नारे दिए, असहयोग, सत्याग्रह, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भरता तथा दुख सहने की भावना। उग्रवादी लोग समाज सुधार के पुनर्धनीय वर्ग तथा रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे। तिलक ने अनुमति विवाह अधिनियम का विरोध किया तथा गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने में तथा गोहत्या विरोधी सभाओं के प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेते थे। इससे स्पष्ट हो गई कि वे हिंदू राष्ट्रवादी परंपराओं तथा हिंदू राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान देते थे, न कि संपूर्ण राष्ट्र पर। यद्यपि हिंदुओं के कट्टर समर्थक थे उग्रवादी नेता, परंतु वे राष्ट्रीय स्तर पर अन्य समुदायों को भी साथ लेकर चलने के समर्थक थे। यद्यपि यह उग्रवाद विशेष रूप से अंग्रेज विरोधी था, परंतु इसमें एक अस्वस्थ भावना उत्पन्न हो गई थी और वह भी धर्म तथा राजनीति के विभाजन अथवा सांप्रदायिकता तथा मुस्लिम पृथक्करण की भावना।